ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। ये बैठक कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के ये अधिकारी कल फिर बात करने वाले हैं। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया था कि भारत पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे।
विश्व के कई नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की एक और महत्वपूर्ण कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है और दोनों देशों से इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ की विदेशी मामलों की प्रमुख काजा कालस ने युद्ध विराम के महत्व और इसे कायम रखने के लिए सतर्कता की आवश्यकता पर बल दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में उम्मीद जताई है कि ये संघर्ष विराम क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बहाल करने में योगदान देगा। सरकार ने कहा है कि युद्ध के कई गेमिंग वीडियो हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के वास्तविक फुटेज के रूप में प्रसारित किए जा रहे हैं। लोगों को ऐसे प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे गेमिंग वीडियो बड़ी संख्या में दिखाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री के कार्यालय के नाम से व्हाट्सएप पर ऐसा संदेश भी प्रसारित हो रहा है जिसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति के मद्देनजर नागरिक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि ये संदेश फर्जी है और सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इस संवेदनशील समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी factcheck@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे जो कार्य सौंपे गए वे सभी उसने पूरी कुशलता के साथ पूरे किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना ने कहा है कि सभी ऑपरेशन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए शानदार तरीके से चलाए गए। अभी ये ऑपरेशन चल रहे हैं और उचित समय पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने सभी से आग्रह किया है कि वे अटकलबाजी से बचें और अपुष्ट जानकारी साझा न करें। दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ानों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड डायल ने एक परामर्श में कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है और यात्रियों को सुरक्षा जांच के दौरान भी इंतजार करना पड़ सकता है। यात्रियों को संबंधित एयरलाइन के संचार माध्यमों से संपर्क में रहने और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सूत्रों ने बताया कि राज्यों को सतर्क रहने, सीमा पार से किसी गोलीबारी से निपटने और अपने क्षेत्र में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय करने को कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ये बैठक हुई। पंजाब ने सैन्य जरूरतों के लिए राजस्थान को अतिरिक्त पानी छोड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बयान में कहा कि राजस्थान की मांग पर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सेना के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ दिया गया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नागरिक रक्षा प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया है और कहा है कि कड़ी चौकसी बनाए रखना समय की आवश्यकता है। कल शाम एक सर्वदलीय बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए और हर चुनौती का डटकर सामना किया जाना चाहिए। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान में 39 अलग अलग जगहों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। एक प्रेस विज्ञप्ति में BLA ने घोषणा की कि ये ऑपरेशन अब भी जारी है जिसमें कई रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। BLA के प्रवक्ता जियंद बलूच के अनुसार हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिसमें पुलिस स्टेशन, सैन्य काफिले और प्रमुख राजमार्गों के किनारे ढांचागत सुविधाएं शामिल हैं। BLA पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक सशस्त्र अलगाववादी गुट है जो बलूच लोगों की आजादी चाहता है। BLA ने दावा किया कि बलूचिस्तान के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाए बिना दोहन किया जा रहा है और सरकार बलूच लोगों को उनके अधिकारों और स्वायत्तता से वंचित कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को नमन करता है जो देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नई तकनीक विकसित करके योगदान देते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र गर्व के साथ उन वैज्ञानिकों के असाधारण प्रयासों को याद करता है जिनके कारण 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण हुए थे। उन्होंने कहा कि ये भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने आतंकरोधी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा पूरा होने तक जारी रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ बिना किसी देरी के 15 मई तक बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविजन संबोधन में कहा कि प्रस्तावित वार्ता तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में होनी चाहिए। इसमें दोनों देश नए युद्ध विराम समझौते पर सहमत हो सकते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि वे इस बारे में तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयप एर्दोगान से बात करेंगे। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्षी ने कहा है कि अमरीका से बातचीत में वो अपने परमाणु अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच आज ओमान में परमाणु वार्ता का नया दौर होना है। कल दोहा में चौथे अरब ईरान सम्मेलन में श्री अराक्षी ने जोर देकर कहा था कि ईरान हमेशा ही परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य रहा है और यूरेनियम संवर्धन सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं प्राप्त करना चाहता और विनाशकारी हथियारों का उसकी सुरक्षा नीति में कोई स्थान नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल स्विट्जरलैंड में चीन के साथ हुई व्यापार वार्ता का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक तरीके से समझौते पर बातचीत की। अमरीका ने अधिकांश चीनी आयात पर न्यूनतम 145% शुल्क लगाया है। चीन ने जवाब में अधिकांश अमरीकी आयात पर 125% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। श्रीलंका में कोलंबो में खेले जा रहे महिलाओं की त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ ताजा समाचार मिलने तक 43वें ओवर में 4 विकेट पर 272 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम द्वारा आज के मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ मजबूत ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि बोर्ड के अधिकारी और IPL संचालन परिषद आज प्रतियोगिता पूरा करने के संभावित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोर्ड ने शुक्रवार को IPL निलंबित कर दिया था। प्रतियोगिता के 16 मैच शेष हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कारण 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच रद्द कर दिया गया था। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले इस मानसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।